लोग कीर्तन पार्टी को धन्यवाद के रूप में तीन बार बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आज के प्रोग्राम के उपस्थिति में एकमेव उपस्थित डॉक्टर नाना साहेब निमाणी, इनका भी हम लोग हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल।
जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
कितना अच्छा होगा अगर सब लोग बोलेंगे तो। जहां पर जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाज तो नहीं आ रही है, सब लोग बड़े प्रेम से गाओ। भगवान का नाम प्रेम से पुकारना चाहिए, एक बोझ की तरह नहीं पुकारना चाहिए।
जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी,
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय की, श्री श्री कौरनिथाय की, श्री हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग पुकारिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो आज और भी एक नई चीज है, वो क्या है? नया साउंड सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? नया साउंड सिस्टम लगाया गया है, आवाज में और ध्वनि में भी कुछ फर्क है ना उसके अंदर। हरे कृष्णा। तो अभी अभी चतुर्मास का पहला महीना समाप्त हो गया। कौन सा महीना था वो? आषाढ़। और वैष्णव मंत्र में कौन सा था पता नहीं। तो आषाढ़ महीने की जो अमावस्या आती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, कटारी अमावस्या। हरे कृष्णा। देखो सबके चेहरे पे हंसी खुल गई एकदम, मुस्कान गटारी का नाम सुनते ही। तो बहुत लोगों को गटारी का मतलब समझ में नहीं आता होगा। उसका मतलब यह है कि श्रावण महीने में सब लोग व्रत करते हैं, दारू नहीं पीते, मच्छी नहीं खाते, मटन नहीं खाते, सब कुछ लोग दाढ़ी भी नहीं करते, अपना अपना तरीका है। लेकिन एक महीने के लिए अभी दारू पीने को मिलने वाला नहीं है और मांस मच्छी खाने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए गटारी अमावस्या के दिन इतना शराब पीते हैं कि गटर में जाके सो जाते हैं, इसलिए इसका नाम गिरा है गटारी अमावस्या। इसका मतलब ऐसा है कि हमारा समाज कितना गिर चुका है। व्रत जो है ना, व्रत अभी ये लोग जो समझते हैं कि गटारी के बाद में एक महीना जो व्रत करते हैं, इसका मतलब खाली खाते पीते नहीं है, बाकी जो काम करना है वो टीवी देखते हैं, गाली देते हैं, मुंह से झगड़ा करते हैं, जो भी करना है वो करते रहते हैं, स्वार्थी काम। खाली एक महीने के लिए शराब नहीं पीते बस, और मांस मच्छी नहीं खाते। तो ये दृष्टि से देखा जाए तो हमारा तो 12 महीने का व्रत है, 12 महीने श्रावण मास है हमारे लिए, क्योंकि 12 महीने में हम लोग कुछ करते ही नहीं, चाय कॉफी तक नहीं पीते। तो लोगों की जो धर्म को पालन करने की कल्पना जो है ना, वो भी बहुत गिर चुकी है। उनको पता नहीं है कि धर्म का पालन मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि श्रावण महीने में छोड़ दिया ना, फिर बहुत बड़े हो गए, एकदम धार्मिक हो गए, एकदम भगवान के भक्त बन गए, और श्रावण महीना खत्म हो गया वापस चालू। अगर किसी व्यक्ति को पता है, समझो समझ में आया है कि शराब पीना सेहत के लिए खराब है, तो डॉक्टर बोलेगा क्या, श्रावण महीने में नहीं पिएगा ना तो अच्छा है, बाकी महीने में पी सकते हो। शराब जो है वो श्रावण हो या आषाढ़ हो या कार्तिक हो या जनवरी हो फरवरी हो, तुम्हारे लीवर को खराब करेगा। तो एक महीना शराब नहीं पीने से, बाकी महीने में शराब पीने से जो नुकसान होता है उससे हम बच नहीं पाएंगे। शराब आप सुबह पियो, रात को पियो, दिन में पियो, नींद में पियो, जगते हुए पियो, हाँ श्रावण महीने में पियो या जनवरी में पियो, उसका जो जहरीला असर है वो हमारे सेहत पे होने वाला है, इसलिए वो कभी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो बहुत तमोगुणी लोग होते हैं वो लोग नहीं मानेंगे इसको, तो फिर कम से कम एक तो महीना मत पियो, ऐसे कहा जाता है। तभी हम समझते हैं कि जिन लोगों को ये बताया जा रहा है वो कितने गिरे हुए हैं। चलो 12 महीना पीते हो, कम से कम 11 महीना पियो, एक महीना मत पियो। तो ये कोई उच्च धर्म के पालन का लक्षण नहीं है। उच्च धर्म का पालन का मतलब है, हमको समझ में आया है कि शराब पीना, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये सदैव मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है। ये सदैव मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति में नुकसान करता है, कि सदैव भगवान का अपराध करते रहता है। ये अगर कार्य करेंगे तो ये सारे भगवान के अपराधी हैं भगवान के प्रति। ये जिस व्यक्ति को समझ में आता है वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको आगे की बातें हम बता सकते हैं कि अभी आपको भगवान का नाम जप करना है, अभी आपको भगवद गीता पढ़नी है, अभी आपको प्रवचन सुनना है, अभी आपको यात्रा में जाना है, अभी आपको भगवान की सेवा में जुड़ जाना है, अभी आपको भगवान के विषय में अधिक गहराई में जानकारी कर लेना है। ये सब बातें उन लोगों को कह सकते हैं जिनको समझ में आता है कि ये चार चीज़ें पहले से ही सदैव के लिए, सदा के लिए जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में हानिकारक है। इसलिए मनुष्य जो है वो मनुष्य बनने के बाद भी जानवर के जीवन से भी नीचे उतरने का प्रयास करता है। हमने जानवर के से भी नीचे उतरने की बात क्यों की, क्योंकि आपने कभी भी आज तक किसी जानवर को शराब पीते हुए देखा है? लोग उसको कभी कभी पिला देते हैं, हाथी को या ऐसे किसी को, लेकिन अपने आप में कभी हाथी शराब पीता है, कुत्ता शराब पीता है, वो विचार करता है कभी? वो उनके लाइफ में तो जो है वो ही करते हैं, निसर्ग का नियम कभी तोड़ते नहीं वो लोग। कभी जुआ खेलते हैं क्या? जो उनका आ रहा है वही खाते हैं, जो मांसाहारी है मांसाहार खाते हैं, जो शाकाहारी है शाकाहार खाते हैं। एक मनुष्य जीवन ऐसा है कि मनुष्य जीवन में इतना सारा बुद्धि दिया हुआ है तो कि मनुष्य आपको सारे निसर्ग के नियम को तोड़ते हुए नजर आएगा। पंछी भी, कुत्ता बिल्ली भी और बाकी जानवर भी, उनका भी नर मादी के मिलन का एक समय होता है, तभी वो एकत्र होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। आप देखें पंछी भी हर सीजन में अपना घर नहीं बनाते हैं, घोंसला नहीं बनाते हैं, वो एक सीजन आएगा उनका, तभी वो सब इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं, फिर उसमें अंडा डालते हैं, उसके पहले संबंध होता है उनका। साल भर में सभी सीजन में कोई पंछी कोई जानवर जो है वो रोज नर मादी का संभोग नहीं करता है। एक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है नाना तरीके से हर एक पद्धति से सारे नियमों को तोड़कर हर रोज हर चीज का भोग लेना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं, करना है नहीं करना है हमको, उसी को भी करने का प्रयास करते रहते हैं। जो नहीं करना चाहिए, जो निसर्ग का नियम के विरुद्ध है, वो भी अलग अलग आइडिया बना के करना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? मनुष्य का दर्जा जो है वो ऊपर है कि प्राणियों का ऊपर है? प्राणियों का ही ऊपर है, क्योंकि प्राणी कभी भी खुद को दिए गए निसर्ग का नियम तोड़ते नहीं है। मनुष्य जो है वो खुद को दिया हुआ जो निसर्ग का नियम है उसको तोड़कर ही कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में नियम ऐसा है कि अगर आप नर मादी एकत्र होते हो तो बच्चा हो जाता है, तो उसको पालन करना पड़ता है। कुत्ते को एक साथ 6 पिल्ले होते हैं, वो कभी अबॉर्शन करता है क्या? कभी देखा आपने कुत्ते ने अबॉर्शन किया? बोले जमता नहीं है, परवड़ता नहीं इतना पैसा, 6 बच्चे कहाँ से पालेंगे? कोई नौकरी धंधा नहीं, कुछ नहीं है, कोई मालिक नहीं है, रस्ते पे घूमना पड़ता है, इसमें 6 बच्चे को लेकर कहाँ घूमेंगे? अबॉर्शन करो, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास लाइन खड़े खड़ा है, 2-4 औरतें भी बैठी हुई है, पीछे कुत्ती बैठी हुई है, मुझे भी करना है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। 6 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, कुछ भी हो, भगवान ने दिया है उसको पालन करते हो, बड़ी जिम्मेदारी से पालन करते हो, बड़े प्रेम से पालन करते हैं, मेहनत भी करते हैं उनको खाना खिलाने के लिए। लेकिन मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो सारा भोग चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहता। तो ये हमको गटारी अमावस्या के बारे में विचार करते हुए सोचना चाहिए कि क्या हम प्रगति कर रहे हैं, क्या अधोगति कर रहे हैं, हाँ भगवान के पास जा रहे हैं कि भगवान के दूर जा रहे हैं। ये अगर आप सोचेंगे तो आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो हमको भगवान के पास लेके जाएं, और हमारे अगर कार्य भगवान से हमसे दूर लेके जा रहे हैं इसका मतलब कार्य में गलती है। और सदैव अगर मनुष्य बनकर आपको रहना है तो आपको देखना है कि मेरा जीवन भगवान की ओर प्रगति कर रहा है कि भगवान से दूर लेके जा रहा है। अपने कार्यों को दूरबीन लेके बैठना चाहिए देखने के लिए कि मेरे कार्य कैसे हैं, क्या ये मेरे कार्य मुझे भगवान के पास ले जा रहे हैं कि दूर लेके जा रहे हैं। नहीं तो फिर क्या है, चतुर्मास है, कार्तिक का महीना है, फिर मार्गशीर्ष का भी पवित्र महीना आएगा, फिर ज्येष्ठ का महीना भी आएगा, हर महीने में पवित्र उत्सव हमने देखे हुए हैं। रामनवमी कौन से महीने में आती है बताओ? चैत्र महीने में आती है, तो वो भी पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष महीना, भगवान ने कृष्ण ने बताया कि मार्गशीर्षो हम मासाणाम मार्गशीर्षो हम, सब मासों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। कार्तिक मास ऊर्जेश्वरी कहा गया है उसको, राजा रानी का महीना माना गया है। तो कौन सा महीना ऐसा है जो पवित्र नहीं, बताओ मुझे आप? सब महीने पवित्र है। माघ महीना पवित्र है क्योंकि माघ में मेला लगता है गंगा जी में, एक महीना लोग गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। कितना बड़ा महत्व है माघ में, जो गंगा जी में स्नान करेगा वो दोबारा जन्म लेगा नहीं, ऐसे कहा गया है। तो भगवान का आयोजन कैसा है? भगवान ने हर महीने में कुछ ना कुछ पवित्र कार्य किया है। वैशाख महीने में पवित्र कार्य किया बताइए, नरसिंह भगवान का जन्मतिथि है उसमें, चतुर्दशी, पूर्णिमा को राधा रमण का आविर्भाव दिवस है कि नहीं? फिर ज्येष्ठ में जाइए, ज्येष्ठ में ज्येष्ठ पूर्णिमा में जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है, ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान यात्रा, क्या क्या बताइए आपको, बताइए। ऐसे चलते रहिए आप, आपको मिलते जाएंगे सब उत्सव भगवान के। ये सब क्यों है? क्योंकि हर दिन मनुष्य का जीवन जो है वो भगवान की भक्ति के लिए बिताया जाए, इसलिए इसकी योजना की गई है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, ऐसा नहीं कि श्रावण महीने में खाली आती है। लोग बोलते हैं हम लोग वो बाकी सब एकादशी नहीं करते, हम लोग खाली आषाढ़ के करते हैं, श्रावणी कार्तिक की करते हैं, 2 बड़ी एकादशी करते हैं। लेकिन वैष्णव जन सारी एकादशियाँ करते हैं, सारी एकादशियाँ उनके लिए बड़ी हैं, और कोई सोमवार मंगलवार शनिवार रविवार नहीं करते हो, सर्वश्रेष्ठ व्रत करते हैं, जो एकमात्र व्रत करने से सारे व्रत करने का लाभ मिलता है, वो है एकादशी व्रत। और जो एकादशी का व्रत धर्मी है, जो व्रत पालन करने वाला है, उसको अन्य कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। और सीधे किसी भी देवता को प्राप्त करने के बजाय सीधे कृष्ण भगवान की प्राप्ति, परमोच्च परम भगवान की प्राप्ति जो है, केवल एक एकादशी का व्रत साल भर प्रेम से नित्य नियम से करने से प्राप्त होता है। तो वैष्णव जो जीवन पद्धति है उसमें सातत्य है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो श्रावण में अलग, कार्तिक में अलग, ऐसा नहीं होता है। वो साल भर में एक ही चलता है उनका कार्यक्रम, व्रत में रहते हैं सब लोग, कभी लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, चाय कभी पीते, मतलब हमेशा व्रत में रहेंगे ना, व्रत में रहते हैं। और क्या व्रत है उनका? भगवान के नाम के जप का व्रत है उनका। 16 माला भगवान का नाम का जप करते हैं रोज, नित्य नियम से ध्यान पूर्वक, और ये 4 नियम पालन करते हैं। खाने में ऐसा नहीं कि हमारे घर में जब पूजा होती है ना तो ही भगवान को नैवेद्य करते हैं, हम बाकी दिन ऐसे खाते, इसको व्रत नहीं कहते। रोज जो भी हमारे गले से उतरता है उसको भगवान को अर्पण किए बिना हम नहीं खाते हैं, नित्य नियम का व्रत है। उसके ऊपर फिर कार्तिक का व्रत आता है, उसको अलग से पालन करते हैं। उसके ऊपर से फिर और किसी महीने का अधिक मास का व्रत आता है, उसको अलग से पालन करते हैं। इसके ऊपर करते हैं, इसको छोड़कर उसको रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन का उद्देश्य को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य समझ में आया तो ये सारे गड़बड़ मामले जो है वो नहीं करेंगे हम। लेकिन क्या करेंगे, अभी गांव-गांव में देखते हैं, हमारे बचपन में देखा है, सब लोग अटारे अमावस्या के दिन में ऐसे पड़े रहते हैं, दारू पी के अगले दिन भर रात 4 बजे तक पीते रहते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। तो बच्चों को क्या लगता होगा कि ये धर्म का पालन है, श्रावण में कुछ नहीं करना चाहिए, बाकी महीने में सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे देख रहे हैं सब लोगों को, ऐसा नहीं समझना कि बच्चे अंधे और बहरे हैं। बच्चों को कहे के समझाने के बदले में आपको देखकर सीखते हो, कैसे बात करते हैं आप, क्या करते हो, कैसे कैसे काम करते हो, सब बच्चे देख रहे हैं। जो व्यक्ति शराब पी के गटर में डोल रहा है उसके बच्चों को समझता है कि मेरा पिताजी दारू पी के आया है, उसको मालूम है, और संसार को परिवार को बर्बाद कर रहा है, मेरे को फीस का पैसा देता नहीं है, क्योंकि शराब पी के पागल होके आया है, घर में बीवी को मम्मी को मार रहा है। तो ये संस्कार जो है कितने घातक हैं। और अगर पिताजी रोज भगवान के नाम का जप करते हुए दिखाई पड़ता है, जब बालक सुबह उठता है उसके पहले से ही पिता स्नान करके तैयार होके बैठकर भगवान का नाम पुकार के वो सुनते सुनते बच्चा उठता है, तो बच्चे को मालूम पड़ता है कि पिताजी रोज जब जल्दी उठते हैं भगवान का नाम जप करते हैं, तो यही धर्म है। ये बिना बताए उसको मालूम पड़ता है, तो भी झगड़ा करता है कि मुझे भी ऐसी माला चाहिए, मुझे भी ऐसी लंबी माला चाहिए और आपके जैसे रंग की झोली चाहिए। फिर वो जैसे पिताजी ऐसे ऐसे करेंगे तो भी ऐसे ऐसे करेगा। जो भी पापा मम्मी करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो यही संस्कार है हमारे। इसलिए अगर हम कहते हैं कि क्या पता हमको, हमने तो कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसलिए हम लोग जो देखते हैं वो करते रहते हैं, इसको बुद्धिमानी नहीं कहते। मनुष्य का शरीर में जन्म लिया है तो सीखना चाहिए हमको कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो कहाँ लिख के दिया है, किसको पता है, उसके पास जाके बैठते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आप पूछते हैं ना कि नौकरी कहाँ अवेलेबल है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना सीट है इधर अवेलेबल। आप लोग यहाँ पर आए तो इंक्वायरी किया था ना कि नर्सिंग का एडमिशन कहाँ मिलता है, कितना फीस है, कितना साल का कोर्स है, उसके बाद में क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि क्या होगा, कितनी नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना प्रश्न हम पूछते हैं अपने लिए। वैसे भगवान के लिए पूछना चाहिए, भगवान कौन है, मेरा जीवन में क्या है, उनका रिश्ता क्या है, कैसे प्राप्त करूंगा उनको मैं, क्या करना चाहिए उसके लिए, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये दुनिया किस लिए बनाई गई है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उनका संबंध कैसे जोड़ दूं। ये प्रश्न अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमारे और जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हमारे और जानवर के जीवन में अंतर वही प्रश्न है जो हम पूछ सकते हैं वो नहीं पूछते। और हम भी अगर पूछना छोड़ देंगे तो हम दो पैर वाले पशु ही हो गए। भले हम डॉक्टर होंगे, पीएचडी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे देश के, लेकिन वो पद पे बैठने के बाद अगर आप पूछते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, तो प्रधानमंत्री पर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जानवर है, ये हकीकत है। हमें उस व्यक्ति से कोई नफरत नफरत नहीं है, हम खाली व्याख्या कर रहे हैं मनुष्य की। तो सब लोगों को पहले ABC क्या है पता होना चाहिए, बाद में PhD, वो बहुत आगे की बात है। इसको ABC पता नहीं, उसके PhD की बातें बोल के फायदा क्या है? तो ABC क्या है? ABC ये है कि जीवन में भगवान को प्राप्त करने का व्रत हमेशा करना चाहिए, 12 महीने करना चाहिए। श्रावण महीने का इंतजार नहीं करना चाहिए। श्रावण महीना कैसा होता है? बूस्टर होता है। हमारे मेडिकल में कैसा होता है? सब लस लगाते हैं ना उनको पहले, फिर 5 साल पे बूस्टर देते हैं। 5 साल की उम्र में पहली बार डोज देते क्या? पहले पूछते कि आपने सब पहला लिया है ना, तो आपको बूस्टर मिलेगा। पहली बार 5 साल की उम्र में आएगा तो उसको बूस्टर मिलेगा क्या? उसको बोलेंगे चालू करो पहले से BCG और स्मॉल पॉक्स सब चालू करो, ट्रिपल पोलियो, फिर 5 साल में आपको बूस्टर मिलेगा। उस तरह साल भर अगर व्रत रखेंगे भगवान के भक्ति का, तो श्रावण महीना आएगा तो और बूस्टर आपके लिए। उसमें हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में हरि विजय पाठ करते हैं, राम विजय पाठ करते हैं, राम पांडव प्रताप कहते हैं, तुकाराम की अभंगा, ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हैं, UP साइड में भागवत सप्ताह करते हैं। वो बूस्टर है रोज के ऊपर किए गए ऊपर भगवान के लिए एक्स्ट्रा, और एक ही बार खाते हैं जो खा रहे हैं रोज भगवान को लगा के खा रहे हैं, लेकिन उस महीने में केवल एक ही बार खाएंगे, मतलब वो एडिशनल हो गया, वो पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये महीना जो है इसमें बहुत सुंदर सुंदर उत्सव है। आप लोगों को पता है इसमें कौन से उत्सव होते हैं श्रावण महीने में? बताओ। हाँ, नाग पंचमी और गोकुलाष्टमी, भगवान की जन्माष्टमी, और बलराम जयंती, बलराम जी का जन्म दिवस, और रक्षाबंधन उसी दिन पे होता है, और नारळी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, बलराम जयंती सब एक ही दिन में होता है। श्रावण शुद्ध पूर्णिमा और हाँ बैलपोळा, गावाकडे असते आमच्या बैलपोळा, बैल को हार पहनाते हैं, उसके हाथ पे चिप्पे लगाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं उसकी, बैल के प्रति अपना जो ऋण है उसको प्रकट करते हैं कि बैल हमारे धर्म के पिता हैं, हमारी जमीन को क्या करते हैं उसको नांगर चलाते हैं और पृथ्वी माता के अंदर सूर्य की शक्ति को पहुंचाते हैं अपने पैरों के माध्यम से, इसलिए उसका ऋण जो है कृतज्ञता जो है उस दिन व्यक्त करते हैं। और कौन सा उत्सव श्रावण महीने में होता है? एनीवेज, तो इसमें एक और उत्सव होता है, वो है झूलन यात्रा। कितने लोगों को पता है? देखो बहुत कम लोगों को पता है। हमारी ऐसी उम्मीद है कि आज के बाद यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि झूलन यात्रा क्या होती है। झूलन यात्रा का मतलब है कि भगवान राधा और कृष्ण या तो अकेले या तो दोनों साथ में झूले पर झूलते हैं, उनको झुलाते हैं। बहुत सुंदर झूलन यात्रा होती है वृंदावन में, वृंदावन में नहीं, वृंदावन में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बहुत बाकी भी राज्यों में भी होती रहती है। तो आज का दिन जो है वो श्रावण महीने का शुद्ध पक्ष का दूसरा दिन है, द्वितीया कहते हैं उसको। कल का दिन जो है वो तृतीया है, इसको ब्रज में कहते हैं हरियाली तीज। हरियाली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बारिश गिरती है ना, अभी आज तो अभी तक बारिश आई नहीं है, वहाँ पर सब सूखा सूखा है, थोड़ा सा गिरा है बोलते हैं कल परसों, लेकिन आमतौर पे इस समय तक वृंदावन में भी बारिश आती है और सब जगह हरियाली छा जाती है, इसलिए उसको हरियाली तीज कहते हैं। और इतनी सुंदर वहाँ पर प्रथा है, सुंदर रिवाज है, या कथा भी ऐसी है कि राधा रानी का जब विवाह हुआ कृष्ण से, बहुत सुंदर लीला है, एक दृष्टि से देखा जाए तो राधा रानी का कृष्ण से विवाह हुआ नहीं है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त रूप में हुआ है भांडेर वन में। तो राधा रानी का विवाह होके जब वो ससुराल नंदगांव चली गई, तो श्रावण का महीना जब शुरू होता है तो उसके पहले मायके से लड़की का जो भाई है, जिसकी नई नई शादी हुई है, उस लड़की का जो भाई है वो रथ लेकर अपने बहन के ससुराल में आता है और रथ में बिठाकर अपनी बहन को अपने घर ले जाता है। और जब वो घर ले जाता है तो उसकी नई शादी है, उसका पहला सावन का महीना है, नई दुल्हन है, तो उसको सब लोग बहुत प्रेम से उसका स्वागत करते हैं, उसकी सहेलियाँ, उसके माता पिता भाई घर के लोग, और प्रेम से उसको फूलों का झूला बनाकर उसमें झुलाते हैं उस नई नई ब्याही हुई दुल्हन को जो उनकी बहन है, जो उनकी बेटी है। ये मायके का उत्सव है, इसलिए जिसकी शादी नहीं हो गई है, जिसका पहला सावन है, उस कन्या को हरियाली तीज के दिन अपने घर पर रहना नहीं चाहिए, पति के घर पे मायके आना चाहिए और वहाँ पर भाई बहन सब मिलके उसको झुलाते हैं और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। ये झूलन यात्रा का नंदगांव बरसाने का रहस्य है। हाँ, तो राधा रानी का विवाह हुआ और पहला सावन आया तो राधा रानी की सहेलियाँ को भी शादी हुई थी तो उनके सब भाई आए और अपनी अपनी बहन को ले गए रथ में बैठकर, लेकिन राधा रानी का जो भाई है श्री दामा वो नहीं आया। तो राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरी शादी हुई, मैं ससुराल चली गई, मेरा भाई मुझे भूल गया क्या, मेरे माता पिता मुझे भूल गए, सब मेरी सखियाँ जो है जो नई नई ब्याही हुई थी उनके भाई रथ में बैठकर उनको अपने घर ले गए हैं, अब तक झुलाते भी होंगे, मेरा भाई नहीं आया। तो राधा रानी गीत गा रही है, प्रेम से पुकार रही है, हे श्रीदामा भैया क्या मुझे भूल गए आप। तो उतने में श्रीदामा जी वहाँ निकलते हैं बरसाने से रथ वेले रथ लेकर खाली, और फिर वो लोग नंदगांव पहुँचते हैं। और नंदगांव पहुँचने के बाद राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है, यशोदा माई नंद महाराज अपनी बहू को भैया के साथ रथ में बिठा कर भेज देती है। ये जो अनोखी रथ यात्रा है वो केवल नंदगांव बरसाने के बीच में होती है और वो कल के दिन होगी रथ यात्रा, जिसमें राधा रानी को ससुराल से लेने के लिए श्रीदामा जी आएंगे और रथ में बिठाकर उनको बरसाने लेके जाएंगे। और बरसाना लेके जाने के बाद में फूलों का हिंडोला, हिंडोला कहते हैं उसको संस्कृत भाषा में, हिंडोला यानी कि झूला, सब घर में बनाया जाता है अपनी अपनी बहनों के लिए और भाई उनको झुलाते हैं, सखियाँ झुलाती हैं और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। तो ये जो सुंदर उत्सव है ये ब्रज में सब जगह मनाते हैं, इसकी विशेषता नंदगांव बरसाने में है, लेकिन झूलन यात्रा का जो उत्सव है वो कल से शुरू होता है और हर मंदिर में जहाँ जहाँ ठाकुर जी के विग्रह विराजमान किए गए हैं वो सब मंदिरों में भगवान के विग्रह को बाहर लेके आते हैं। एन मौके पे कभी भगवान अंदर रहते हैं, अंदर के कमरे में गर्भगृह में होते हैं और गर्भगृह में उनको केवल दीपक के प्रकाश में आप देख सकते हो आम तौर पे, लेकिन सावन के महीने में हर शाम को उनको अपने गर्भगृह से बाहर लाकर एकदम लोगों के सामने लाकर खड़े कर देते हैं। उसके पहले 4 बजे जब उनको जगाते हैं उत्थापन आरती के पहले, दोपहर में जब राजभोग आरती होकर मंदिर बंद हो जाता है, तो मंदिर बंद होने के बाद मंदिर खुलने के 4 घंटे के समय के अंदर पूरा मंदिर जो है उसको फूलों से सजाते हैं, उसको कहते हैं फूल बंगला। फूल का एक्चुअली बंगला बनता है, पूरा मंजिल बनती है, उसके खिड़कियाँ बनती हैं, उसके दरवाजे बनते हैं, सिंहासन बनता है फूलों का, फूल सिंहासन झूले के रूप में होता है। उसके लिए फूल बेंगलोर से आते हैं, कोई मद्रास से आते हैं, कोई बम्बई से आते हैं, कोई कर्नाटक से आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग रंग के अलग अलग खुशबू के फूल आते हैं। और गांव के सिंपल सिंपल दिखने वाले लोग जो हैं बड़ी कुशलता से बहुत सुंदर आकर्षक ऐसे फूलों का बंगला बनाते हैं। जैसे हमारे ये देखो ये लगे ना झुंबर, उसको कहते हैं शैंडेलियर, इसमें से बिजली के दीपक जलाते हैं, ऐसे फूलों के बनाते हैं वो, पूरे मंदिर में लटके रहते हैं ऐसे पूरे। और जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको अलग अलग फूलों की सुंदर सुगंध आएगी, आपको प्रसन्न हो जाएगा आपका मन। और उसके सामने बंगला बना होता है ऐसा बड़ा, जैसे कि आप किसी बंगले के सामने खड़े हो, उसका प्रवेश द्वार बीच में होता है और उस प्रवेश द्वार में झूले के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। और फिर 4 बजे से जो शुरू होता है झुलाना, उनको रात को 9 बजे तक चलता है, सब लोग आके ठाकुर जी को झुलाते हैं, उनको फूलों से भरा हुआ एक डोरी भी होती है वो नीचे आ जाती है और वहाँ से लोग झुलाते हैं उनको। फिर ठाकुर जी को नए नए शॉल पहनाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं, नई नई माला पहनाते हैं, फिर उनको उतार के लोगों को महाप्रसाद देते हैं, फिर शाल को उतार के शाल के महाप्रसाद देते हैं, फिर नई शाल चढ़ाते हैं बहुत हैवी, हाँ मोतियों से और मणियों से और रत्नों से भरी हुई, पहनाते हैं उतारते हैं, पहनाते उतारते हैं, और सभी प्रकार के सुगंधित फूलों से उनका श्रृंगार होता है बहुत सुंदर। और इसको देखने के लिए सारे जो लोग हैं वो शाम को 4 के पहले निकल जाते हैं घर से, और रात को 9 बजे तक पूरे वृंदावन में ब्रज में जहाँ भी रहते हैं 5 घंटा घूमते रहते हैं, ये मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से वो मंदिर, पहले बाकी भी आ रही है, फिर राधा वल्लभ जी, फिर उसके बाद में राधा दामोदर, फिर राधा श्याम सुंदर, फिर राधा रमन, फिर राधा गोकुलानंद, फिर गोपीनाथ जी, फिर आशेश्वर, फिर सॉरी फिर वो गोपेश्वर महादेव, फिर राधा गोविंद जी, ऐसे ही जाते रहेंगे, और जहाँ पर लास्ट में शयन हो जाएगा भगवान का तो घर आएंगे लौट के, सब मंदिर बंद हो जाएंगे। इतना सुंदर, अभी आप सोचिए हमारे देश में इतने उत्सव क्यों हैं बताइए आप। अरे आप अमेरिका जाओगे एक ही उत्सव है, कौन सा? क्रिसमस, लास्ट में आता है वो लोग साल भर वेट करते हैं उसको, छुट्टी कब मिलेगी? क्रिसमस वेकेशन। तो मक्का मदीना जाओगे सऊदी अरबिया तो कितने उत्सव हैं? 2 उत्सव, एक रमजान ईद, एक बकरीद, बस उसके ऊपर कोई फेस्टिवल नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं। हमारे देश में देखो हर महीने में उत्सव, कारण क्या है उसका? 4 महीना खाली काम करना है, ये हमारे देश का धर्म है। जब बारिश आती है ना तो 4 महीना खेती करना है बस, उसके बाद में 8 महीना क्या करना है? 4 महीने में 12 महीने का भोजन तो हो गया आपका, रेडी हो गया ना, स्टॉक में आ गया, तो और मेहनत करने की जरूरत क्या है? नहीं, कंप्यूटर कंपनी में काम करना है, कंप्यूटर खरीदना है अभी, उसके बाद मोबाइल की कंपनी में काम करना है, मोबाइल खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। 4 महीने काम करना है, 8 महीने केवल भजन करना है, केवल सत्संग करना है, कोई जरूरत नहीं और सब चीज़ की। अभी आपको नया नया चीज़ चाहिए, उसके लिए 12-12 घंटे 12 महीने काम करना पड़ता है, ये हमारा कल्चर है। और 8 महीने में हर दिन, हर हफ्ते में 2 दिन के बाद में कोई उत्सव आ रहा है 1 by 1। इसलिए आदमी को डिप्रेशन नहीं होता था उस समय। अभी आप सोचिए शाम को 4 बजे आप निकलोगे, बच्चों को बीवी बच्चों को लेके निकलोगे, ये मंदिर से वो मंदिर, वो मंदिर से वो मंदिर, यहाँ गए यहाँ प्रसाद मिला, कोई माला मिली, उसके आगे वो मंदिर गए तो देख रहे वाह कितना बढ़िया ठाकुर जी झूल रहे हैं, देखो कितना बढ़िया फूलों का श्रृंगार किया है, वो झूला कितना चमक रहा है, इतने सुंदर फूल है उसके, क्या नक्शी काम किया है, देखो आप ठाकुर जी बड़े श्रृंगार करके झूल रहे हैं उसको, कोई पंखा दे रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, हर मंदिर में कोई ना कोई गीत गाया जा रहा है झूले के उत्सव का। और शाम को 5 घंटे तक घूम के आपको रात को घर लौट के आके उसी की याद में सो जाएंगे तो क्या डिप्रेशन होगा आपको, क्या टेंशन आएगा, जितना टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। जैसे हम कीर्तन में नाचते हैं तो जितना टेंशन है सब खत्म हो जाता है, उसी तरह से अगर आप अभी झूला उत्सव खत्म हो गया फिर जन्माष्टमी का उत्सव है, फिर सब व्रत करेंगे और भगवान के लिए भोग बनाएंगे, जन्म फिर भगवान को झूले में बिठाएंगे और रात को 12 बजे झुलाएंगे उनको माता यशोदा के भाव में, नंदोत्सव के भाव में। उसके 15 दिन के बाद में क्या होगा? राधा अष्टमी आएगी, राधा रानी को झूले में झुलाएंगे, उसके जन्म की बधाई गाएंगे, उसके बाद तुरंत भाद्रपद महीना, उसके बाद में तुरंत कार्तिक आएगा, कार्तिक में तो उत्सव ही उत्सव है, लगातार एक के बाद एक उत्सव ही उत्सव है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, लोगों को डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ बात अपनी भक्ति विधान में कैसे, एक जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई तो उसके बाद में अभी जन्माष्टमी आएगी, है ना? आपको डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेट होने के लिए टाइम नहीं है बीच में, भगवान की सेवा में तुरंत लगना है आपको, इसके बाद दूसरा, और उसके बीच में फिर गणपति भी है, उसके बीच में नवरात्रि भी है, कहीं ना कहीं से भारतीय लोगों को भगवान के साथ जुड़े रहने का ये प्लानिंग है, इसलिए हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे धर्म की जो विधियां हैं इस पर हमारा ही विश्वास उड़ते चला जा रहा है, हम लोग कोई श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक इन उत्सवों का पालन करता है, शास्त्र में लिखा है कि यहाँ पर जो हम उत्सव पालन कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पर हम उत्सव पालन कर रहे हैं वही उत्सव भगवान के धाम में जाकर हम मनाएंगे, यहाँ उसकी नेट प्रैक्टिस हो रही है खाली बस। इसलिए अगर आप जन्माष्टमी यहाँ मना रहे हैं तो गौलोक धाम में जाके भी वही उत्सव मनाएंगे, इसलिए यहाँ के उत्सव श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ में हमको मनाने चाहिए। हमारे कितने लोगों के भक्तों के घर में झूलन यात्रा होती है। मैं 9 तारीख को मुझे निमंत्रण है एक जगह पर, छोटे से घर में छोटे से झूला बनाया जाएगा, इतने ठाकुर जी हैं छोटे से उनको झुलाया जाएगा, जितना भी पैसे हैं छोटे से जितना भी कैपेसिटी है उतने में सुगंधित मोगरा या कोई सुगंधित फूल लेके आएंगे उसका झूला बनाएंगे छोटा सा, वो सब लोग झुलाएंगे और गीत गाएंगे। भगवान देखते नहीं कि आपका झूला कितना बड़ा है, सोने का बनाया है कि चांदी का बनाया है कि रत्नों का बनाया है या मोतियों का बनाया है, कितने महंगाई के फूल लाए आपने, कहाँ कितनी दूर से लाए हैं, बैंगलोर से लाए क्या तो ये अच्छा है, ऐसा नहीं भगवान बोलते। भगवान तो भाव देखते हैं और भाव तो पैसे से कहीं श्रेष्ठ होता है। भाव ऐसी वस्तु है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हमारे जीवन में हम उतने ही अमीर हैं जब तक हमारे पास वो चीजें हैं जो हम पैसे से खरीद नहीं सकते, और अपने पास अगर केवल पैसे से खरीदने वाली चीजें हैं तो आप बिल्कुल गरीब व्यक्ति हैं। अगर आपके पास वो वस्तुएं हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, प्रेम है आपके पास कृतज्ञता है, आपके पास मित्रता है, आपके पास मददगार भावना है, आप हृदय से ऋणी हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, भाईचारा अच्छा है, माता पिता भाई बहन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो आपके लिए जान देने के लिए भी हाजिर हैं, मदद करने के लिए संकट के समय तैयार रहते हैं, इनमें से कोई भी चीज आप पैसे से खरीदी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपका 5 रुपए भी है और 5 रुपए का मोगरे का बंडल आप लेके आते हो और उससे झूला बनाते हो और भगवान को झुलाते हो, भगवान को आनंद आएगा उसके अंदर, क्योंकि वो जो प्रेम आप अर्पण कर रहे हो वो 5 रुपए के सामने करोड़ों गुना बड़ा है और उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। आपके 5 करोड़ के फूल बंगले को स्वीकार नहीं करते हो, उसके पीछे क्या भावना है उस भावना को वो स्वीकार करते हैं। ब्रज में इतना सुंदर माहौल है कि ऐसे ऐसे मैं आपको एक गीत का अर्थ बताता हूँ। एक गीत जो वहाँ गाते हैं, झूला झूले राधा प्यारी चुनरिया फहर फहर फहरे, हाँ वैसा है कि जो राधा रानी और कृष्ण भगवान को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा रानी और कृष्ण भगवान को झूले में बिठाने के लिए सजा धजा कर सब गोपियां लेके आती है। वृंदा देवी किसी वन में झूला सजाती हैं, वो पेड़ की बड़ी शाखा चुनती है अच्छा पेड़ और उसकी मजबूत शाखा में फूलों से लड़ियों से बना हुआ झूला बनाते हैं और फिर राधा रानी को यहाँ पर सजा धजा कर लेके आते हैं हाथ पकड़ के छुम छुम छुम, वहाँ से कन्हैया जी को लेके आते हैं वनमाला पहन के मोर पंख और मुरली धारण करके, फिर दोनों को बड़े प्रेम से रथ पर बिठाते हैं झूले पर बिठाते हैं। फिर कुछ समय कृष्ण भगवान जो है वो अकेले राधा रानी को झूला झुलाते हैं, कुछ समय कृष्ण को बिठाकर राधा रानी झूला झुलाती हैं, कुछ समय दोनों को बिठा कर सखियां झुलाती हैं और कुछ समय दोनों उतरते हैं और सखियों को वन बाय वन बिठा कर झुलाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की झूला यात्रा होती है। एक कुंड है वहां पर, इसका नाम है ललिता कुंड। वहां पर एक बार राधा और कृष्ण का झूलने का प्लानिंग हो चुका था और कृष्ण भगवान समय के पहले ही आके वहां पर रेडी हो गए थे सज धज कर, और राधा रानी को थोड़ा देर हो रही थी श्रृंगार करने में, होता है ना औरतों को अक्सर लेट तो होता ही है, अरे ये थोड़ा बाकी रह गया, ये थोड़ा करना है, ये थोड़ा रह गया, तो राधा रानी थोड़ा लेट हो गई। तो ललिता जी ने सब आयोजन किया था सब, तो वो वेट कर रहे थे कृष्ण भगवान भी, तो नारद मुनि आते हैं और कहते हैं ललिता जी वो तो राधा रानी को देर हो रही है, इतना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप बैठ जाओ, मैंने पहले भी वरदान मांगा था कि ललिता की वो और कृष्ण के साथ झूलते हुए मुझे देखना है, आज अच्छा मौका है, वैसे भी देर हो रही है तो आप बैठ जाओ। तो उसको संकोच हो रहा था, वो तैयार नहीं थी लेकिन फिर भी आग्रह किया गया तो वो बैठ गई कृष्ण भगवान के लिए और ललिता जी और कृष्ण को बैठकर झुलाने लगे झूला। उतने में नारद मुनि तुरंत वहां से निकले और बरसाने गए। तो बोले तुम जानते हो क्या, तुम देर कर रहे हो यहाँ पर, तुमको पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हारे नाम होते हुए वहां पर राधा रानी तुम्हारे जगह पर ललिता जी झूल रही, जाके देखो। तो नाराज हो जाती है, जाती है गुस्से में, देखती है थोड़ी यहाँ ललिता झूल रही है, तो नाराज होकर फिर चली जाती है वहां से। तो ये भी लीला है, भगवान अपने राधा रानी का प्रेम बढ़ाने के लिए लीला करते हैं। एनीवेज, तो ये जो सामान्य लीला हो रही है उसके अंदर राधा रानी और कृष्ण को जब झुलाते हैं तो उनकी लंबी लंबी जो फूलों की माला है ना, ये छोटी सी है, ऐसी लंबी लंबी पांव तक होती है, मोतियों की भी होती है और फूलों की भी होती है और मणियों की भी होती है और रत्नों की भी होती है, सब कुंडल भी होते हैं लंबे लंबे, वो भी झूलते रहते हैं ऐसे, हाँ सब। तो जब झूला ऐसे पीछे जाता है तो सब मालाएं लटकती ना सामने, जब आगे जाता है तो ये यहाँ के पीछे चुनरी उड़ते उड़ने लगती हवा में, जो जो पहना हुआ है दुपट्टा भगवान ने पहना है, राधा रानी चुनरी पहनी हुई है, जब झूला झूलता है तो सब चुनरिया कैसे चुनरिया फहर फहर फहरे सब लहराते रहते हैं। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है जो साइड में गोपियां खड़ी हैं वो केवल फूल बरसाते रहती हैं दोनों तरफ से, जब ये झूलते हैं ऐसे आगे पीछे तो उन पर फूलों की वर्षा करते हैं अलग अलग रंगों के और खुशबुओं के, और जो सामने वाले पीछे रहते हैं वो झोंका देते रहते हैं पीछे से आगे। तो कभी कभी क्या होता है जो सखियां झूला रही है उनके भी गले में माला होती है, उनके भी गले में श्रृंगार किया हुआ मोतियों की माला फूलों की माला होती है, तो कभी कभी इनकी मालाएं उनकी माला में उलझ जाती है, और जब उलझ जाती है तो झूला तो झूल रहा है ना, तो उलझ जाने के बाद क्या होता है वो खींचा जाता है, वो टूट जाता है, फिर फूल और मोती जो है झरर 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 झड़ जाते हैं, तो सब सखियां वो प्रसाद को बिनने के लिए भाग जाती है और मोती और फूल बिनते हैं और प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऐसी सुंदर लीला है, फिर वो राधा रानी को झूलते हुए देखकर सबको बड़ी खुशी होती है, सब लोग धक्का देते हैं जोर जोर से, तो कभी कभी बीच में क्या करते हैं सखियां इतना जोर से धक्का देते हैं कि झूला जाके एक सर्कल पूरा करता है, पूरा गोल वापस आ जाता है, तो राधा रानी डर जाती है, तुरंत कृष्ण को गले मिलती है कि मुझे डर लग रहा है, तो वो डरे हुए राधा रानी को देखकर सब लोग को खुशी होती है, वो तालियां बजाते हैं जोर जोर से, फिर वो 10 धक्का देते हैं तो नीचे नीचे घूमता है, फिर 11वां धक्का ऐसा देंगे पूरा सर्कल पूरा करेगा। और हमारा झूला हमने बचपन में देखा है एक ही दिशा में घूमता है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण का झूला होता है ना वो कभी साइड में घूमता है, कभी ये साइड में घूमता है, कभी ऐसे भी घूमता है, कभी ऐसे गोल गोल भी घूमता है, हर प्रकार से घूमता है वो, कभी राइट गोल में घूमता है, कभी लेफ्ट गोल में घूमता है, कभी राइट साइड में घूमता है, कभी लेफ्ट साइड में घूमता है, कभी आकाश में मेरी को राउंड होता है ना वो जायंट व्हील वैसे घूमता है। और अचानक जब भी वो झूले का जो उत्सव है वो जब अपनी पराकाष्ठा में पहुंचता है ना, पीक पर पहुंचता है, तो क्या होता है अचानक सभी सखियों का मूड आता है अभी होली खेली जाए, सब लोग अपने अपने कलर निकालते हैं, फिर लाल पीला गुलाबी सब रंग जो है उधेड़ते हैं, और ऐसे कहा गया है आनंद वृंदावन चंपू में हमारे कृष्णदास कवि कर्णापुर वर्णन करते हैं कि जो कुंज में ये लीला हो रही है वो कुंज अदृश्य हो जाता है, सारे जगह कलर छा जाते हैं, पूरे कलर का धुंध फैलता है सब जगह पे, रंगों का धुंध जो है नीले पीले हरे लाल गुलाबी भगवे रंग का जो कलर है उसमें सब ये खो जाते हैं, दिखते नहीं किधर भी, और उस खो जाने के बादल के धुंध में कृष्ण पिचकारी निकालते हैं और सभी सखियों को पिचकारी लगाते हैं, फिर वो भी पिचकारी निकालते हैं और सब लोग झूला झूलते हुए पिचकारी का खेल खेलते हैं। ये आखिरी चैप्टर में कवि कर्णापुर वर्णन करते हैं कितना आनंद होगा उसके अंदर, बताओ इस आनंद के उत्सव में जो खड़ा है समझो कुछ नहीं कर रहा है देख रहा है, उसको दुख हो सकता है क्या, उसको चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन विफलता आत्महत्या का विचार ऐसा मन में आ सकता है क्या? अरे सुनने से भी आपका विचार सब दूर हो जाएगा, सारी चिंता का जो धुंध अपने मन में पड़ा हुआ है सब दूर हो जाएगा, सब सुंदर उत्सव है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन के मंदिरों में एकादशी श्रावण शुद्ध एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तक झूले का उत्सव होता है, और वो खास करके राधा गोविंद जी के विषय में होता है, और 5ों दिन राधा गोविंद जी के झूलन यात्रा के उपलक्ष्य में हर इस्कॉन मंदिर में विश्व भर में जितने मंदिर है 450 के ऊपर मंदिर है जहाँ पर विग्रहों को स्थापन किया गया है वो सबको झूले में झुलाते हैं, और सब लोग ऐसे कहा गया है जो भगवान को झूलन उत्सव में जाते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, रथ यात्रा में जाते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं, तो बचते किधर है फिर, जाते नहीं हो बच जाते हैं। जो जाते हैं वो सब चले जाते हैं भगवान के धाम में। कितना रास्ता बनाया भगवान ने, अभी भी रथ यात्रा हुई उसमें बताया था हमने कि रथ यात्रा में जो जाएगा रथ खींचेगा वो वापस नहीं आएगा। अभी बोल रहे झूलन यात्रा में जो जाएगा रथ झूलन झुलाएगा वो वापस नहीं आएगा। जन्माष्टमी का उत्सव मनाएगा वो वापस नहीं आएगा। मतलब आप भारत में जन्म लेने के बाद में यहाँ बच नहीं सकते। अगर आप बुद्धिमान हो, मनुष्य का जीवन मनुष्य के स्तर पर जीवन जी रहे हो, तो आपको यहाँ पर रहने का कोई चांस नहीं, आप तुरंत भगवान के धाम में चले जाएंगे इसी जन्म के अंदर। लेकिन जो कहीं नहीं जाएंगे वो यही रहेंगे और बार बार आएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी जठरा शयनम, माता के गर्भ में शयन करने के लिए बार बार आएंगे। जन्म मृत्यु की ठोकर खाने के लिए बार बार आएंगे। कष्ट भोगने के लिए अनंत बार आएंगे। तो इसमें दुर्भाग्य किसका है? भाग्य तो भगवान ने सब जगह पर फैला के रखा हुआ है। पूर्व में जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, किधर भी जाओ, भाग्य के दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। हम लोग बराबर भाग्य का दरवाजा छोड़ के बाकी सब दरवाजों के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारी खासियत है। हम चुन चुन के भाग्य के दरवाजे चुनते हैं, उनको अवॉइड करते हैं और अन्य दरवाजे में घुस जाते हैं और फिर बार बार इस दुनिया के दरवाजे से अंदर आकर जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते हैं। ये सुंदर कल की जो हरियाली तीज है, इसका सुंदर रहस्य ये है। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको हरियाली तीज में क्या होता है। हरियाली तीज के अंदर ब्रज में, वृंदावन में बांके बिहारी जी का बहुत फेमस मंदिर है। ये बांके बिहारी जी बहुत राजा है वृंदावन के, नंबर वन के ठाकुर जी हैं वो। उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साल में केवल एक ही दिन होता है। बांके बिहारी की विशेषता ऐसी है कि ये इतने प्रेमी हैं भगवान अपने भक्तों के कि भगवान किसी भक्तों से नजर मिला दिए ना अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं भक्तों के पीछे। ऐसे हुआ है पहले कि भोग लगाने का दरवाजा बंद कर दिया, जब खोल दिया पर्दा तो अंदर भगवान गायब, सब जगह ढूंढ रहे हैं तो बाहर किसी भक्त से बैठ के बात कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि किसी भक्त ने नजर मिला ली इनसे प्रेम से तो गए, ये उनके हो गए, चले जाते छोड़ के। तब से ये मंदिर में रिवाज है वो पर्दा जो है 2 सेकंड खोलते हैं फिर बंद करते हैं। आपकी नजर सेटिंग होने के पहले बंद आपकी नजर मिलते मिलते ही पर्दा बंद, फिर आप फिर नजर मिलाएंगे फिर पर्दा बंद। ऐसे बार बार पुजारी लोग जो है पर्दा आगे पीछे बंद करते रहते हैं। वो ठाकुर जी जो है साल भर में उनके चरण दिखाई नहीं पड़ते, उनका जो लहंगा होता है वो पूरा ढक के रहता है चरणों को। हरियाली तीज के दिन उनके चरणों का दर्शन होता है। तो इतनी भीड़ होती है वृंदावन में उनका दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर। उस दिन कैसा होता है श्रृंगार, पूरा मंदिर जो है उसको फूलों से बंगला बना देते हैं पूरा। उसमें झूमर लगा रहे हैं, उसमें कुछ लटके हुए डेकोरेशन है, कुछ मालाएं हैं, कुछ क्या क्या हम उसका वर्णन नहीं कर सकते आपको। क्या वर्णन करेंगे उसका, जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि उसका फोटो लेने के लिए भी अलाउड नहीं है। एक एक फूल का बंगला 1-1 करोड़ का होता है और वो कुछ घंटों में खड़ा कर देते हैं। वो पहले से लाके रखते हैं और बुकिंग होता है उसका। 1 महीना झूला चलता है, बाकी सब मंदिरों में 5 दिन चलता है, किसी में 15 दिन चलता है, बाकी बिहार का 1 महीना चलता है। 1 महीने का सारा दिन का बुकिंग रहता है उसका, आज तुम्हारा कल मेरा परसों उसका, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 1 करोड़ का। वो सब देखने को आते लोग, भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका आनंद लेने के लिए आते लोग, उसका सुगंध लेने को आते हैं, उसका दर्शन करने को आते हैं। तो हरियाली तीज के दिन उनका चरण का दर्शन भी होता है बीच में। तो उस दिन क्या होता है ना, वो बंगला जो है ना बंगला, उसके गेट के ऊपर एक बड़ा कमल का फूल बनाते हैं और ठाकुर जी बांके बिहारी को एक भंवरा बना देते हैं। दैट मीन्स बांके बिहारी जी इज मेड इन टू अ बम्बल बी, ही इज डेकोरेटेड एज बम्बल बी एंड दैट बम्बल बी इज सिटिंग ऑन अ बिग लोटस फ्लावर एज इफ सर्चिंग फॉर हनी। तो ऐसे बड़े कमल के फूल के बीच में ठाकुर जी को भंवरा बना देते हैं, मानो उधर मधु प्राप्त करने के लिए ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। ये दर्शन मैंने किया है, बहुत सुंदर दर्शन, लेकिन उसका फोटो निकाल नहीं सकते। और सब जो पुजारी हैं वो हरे रंग की धोती और हरे रंग का कुर्ता और हरे रंग का दुपट्टा पहनते हैं और अधिकतर श्रृंगार जो है हरे रंग का होता है। उस दिन पर्दा भी हरे रंग का होता है, उधर भी जो भंवरे बनकर भगवान बैठे हुए ना, उनका भी पर्दा दो दो मिनट में बंद करते रहते हैं। पता नहीं भंवरे की नजर किसी को मिल गई तो भंवरा उड़ जाएगा फिर। हाँ, राधा रानी के कमल में फंसा हुआ है वो, लेकिन किसी भक्त ने खींच लिया तो गया फिर उड़ के, कब मिलेगा फिर। इसलिए बार बार पर्दा जो है हरे रंग का आगे पीछे करते रहते हैं। बहुत सुंदर आनंद है उधर, कल के दिन होगा वो, दुनिया पहुंचेगी वहां पर दर्शन करने के लिए। यही आनंद है जीवन का। भगवान के विषय में विविध प्रकार से, विविध उत्सव के माध्यम से भगवान के विषय में लगे रहना, संबंध में जुड़े रहना और सेवा में लगे रहना, यही मनुष्य जीवन का आनंद है। यही उद्देश्य है जीवन का, यही करना है हमको। बाकी जो हम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हम परिवार को पाल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेटेस्ट मोबाइल हाथ में आया हुआ है, लेटेस्ट गाड़ी अपने पास में है, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये सब यही रहने वाली है। इसमें से कोई भी वस्तु आपके साथ में चलने वाली नहीं है। आपके साथ में वही जाएगी जो आपने भगवान के विषय में इकट्ठा किया है, जो भगवान की स्मृति, भगवान की यादें। जैसे मैंने अगर किसी बार हरियाली तीज को उस भंवरे का दर्शन किया है तो बड़े कमल में विराजमान है, तो वही मेरी याद मेरे साथ जाएगी तो भगवान के विषय में संबंधित है। वो याद नहीं जाएगी कि अमिताभ बच्चन को पिक्चर में देखा था उस हीरोइन के साथ में, वो बड़ी हिट फिल्म थी। वो याद मुझे भगवान के पास नहीं पहुँचाएगी, मुझे भगवान के पास वही याद पहुँचाएगी कि मैंने ठाकुर जी को झूला झूलते हुए देखा था 1989 में। पहली बार मैं हमारे गुरुदेव के साथ में 7 दिन की झूलन यात्रा की यात्रा में गए थे, और केवल झूलन यात्रा ही 7 दिन दर्शन किया, सब जगह पर जा जाके, बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन में, मथुरा में, जहाँ जहाँ गए वहाँ पर झूला झूला ही देख रहे थे रोज। इतनी गहरी याद अभी भी हमारे मन में है, वो सारे रिकॉर्डिंग किए हुए हैं वहाँ के भजनों के, इतना फिट मन में है वो, आज भी याद आता है वो भंवरे का दर्शन और राधा दामोदर का झूला, राधा गोविंद जी का झूला, राधा गोकुलानंद का झूला, हाँ, राधा वल्लभ जी का झूला, इतना सुंदर। मेरे भाई पहली बार गए थे ऐसे दिखने के लिए, तो जाते ही उन्होंने पहचाना कि अरे मेरे भाई है, तुरंत जाके उसको एक बड़ा जोरदार शॉल पहना दिया, ठाकुर जी के ऊपर निकाल के सीधा। मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए, अरे हमारी कुछ योग्यता नहीं है फिर भी इतनी बड़ी कृपा मिल रही है। बुलाकर वो भी बुलाया गया उनको ऊपर, शॉल पहनाया गया, अभी भी शॉल संभाल के रखा है। हृदय को छूने वाली याद है ना ये, तभी भी याद, शॉल को देखेंगे तो याद आएगा, अरे क्या ठाकुर जी ने कृपा की थी हम पर। वो याद हमारे मन में रहेगी और मरते वक्त याद आएगी तो हो गया ना, जीवन धन्य हो गया तुम्हारा। एक प्रसंग है खाली बस, राधा वल्लभ जी के मंदिर गए और वहां पर दर्शन करने गए थे, अचानक कोई प्लान नहीं था, वो पुजारी ने बुलाया, गोस्वामी ने भगवान के ऊपर का शॉल निकाल के पहनाया और एक बड़ा बक्सा भर के महाप्रसाद दिया। मेरे भाभी और भाई दोनों रोए, भावना से गदगद होकर रोए। और क्या चाहिए जीवन में, पैसे से वो खरीद नहीं सकते हैं ना, पैसे से आपको देंगे वो शॉल, लेकिन गुसाई के दिल में आ गया तो आपको बुलाया और दे दिया। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो, उसको दिल में आया तो दे दिया भगवान की कृपा। तो ये मतलब क्या हुआ, वो चीज़ जो आपको वहाँ मिल रही है ठाकुर जी के ऊपर पहनी हुई शाल महाप्रसाद के रूप में, वो आप पैसे से खरीद नहीं कर सकते हो, वो कृपा होगी तो ही मिलेगा आपको। वो दर्शन भी आप 1 करोड़ रुपये भी खर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो भाग्य में होगा तो ठाकुर जी आपको दर्शन कराएंगे। दुनिया में ऐसे अरबोंपति पड़े हुए हैं वो सब वृंदावन नहीं पहुंचते झूला देखने के लिए, वो अपने नोटों के सागर में डूबे रहते हैं, वो वृंदावन तक पहुंच नहीं पाते। दर्शन की बात तो आगे रही, उत्सव के समय जाने का तो और दूसरी बात रही। और हम जैसे फटीचर आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं उत्सव के समय दर्शन करने के लिए, हाँ राधा रानी और वृंदावन, बांके बिहारी, दामोदर जी, हाँ राधा वल्लभ जी, सबका दर्शन होता है, महाप्रसादी प्राप्त होती है, लोग आकर देते हैं। तो आपके पास ऐसे कितनी वस्तुएं हैं, आप जाकर गिनना आज, जो आपसे पैसे से नहीं खरीदी है आपने। अगर आपके पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं तो आप बहुत धनवान हो, और आपके पास केवल वो चीज़ें हैं जो आपने पैसे से खरीदी हुई है, इसका मतलब वो सब होते हुए भी आप गरीब हो। तो झूलन यात्रा के दिन इस पर चिंतन कीजिए आप। अगर आप गरीब से गरीब हो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप पेड़ के नीचे रहते हो, लेकिन अगर आप मन में भगवान के लिए मणि कंचन को बंध्यो हिंदोलो, अगर मणि और कंचन मणि की सोना और मणि और मोतियों से मन के अंदर झूला बनाते हो और मन के अंदर वो झूले में ठाकुर जी को बिठाते हो और झुलाते हो प्रेम से उनका नाम गाते हुए, तो आप अरबपति से भी अमीर है, क्योंकि मन की सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। अगर मन में भी आप झुलाते हो ठाकुर जी आपका सेवा स्वीकार करेंगे। लेकिन जो अमीर आदमी होता है करोड़ों करोड़ों रुपए वाला, वो पैसे से बंगला बनवाता है लेकिन मन में उसके कोई भाव नहीं होता है, तो क्या लाभ है उसका। उससे अच्छा गरीब होकर मन में भगवान के लिए सेवा करना बहुत अच्छी बात है। उस हृदय के भाव को वो जो भवरा है ना वो छीन लेता है और उसी का बन जाता है। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा की, हरियाली तीज महोत्सव की। तो आप सबको हम विनती करते हैं कि आपके घर में भी झूला बनाइए फूलों का, भगवान को झुलाइए, लड्डू गोपाल को झुलाइए, और नहीं होता है तो मंदिर में आइए एकादशी के बाद। और कल के दिन घर में बैठे हो याद कीजिए हमने क्या सुना था कल, मन में ठाकुर जी को झुलाइए, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और एकादशी को मंदिर जाइए शाम को, सब भक्त लोग बड़े प्रेम से इकट्ठा होते हैं, शाम को 4 से लेकर 9 बजे तक गीत गाते हैं और झुलाते हैं, गीत गाते हैं और झुलाते रहते हैं। कम से कम जाइए, थोड़ा पैर को कष्ट दीजिए, वहाँ तक पहुँच जाइए, अपने भाव को अर्पण कीजिए भगवान के चरणों में, वो आपके हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी बात बताना रह गया कि इस जो मौसम है ये झूलन यात्रा का, उसमें सब घर में जालीदार मिठाइयाँ बनती हैं। मतलब क्या हुआ, मैसूर पाक, घेवर, इस प्रकार का जो मिठाइयाँ होते हैं उसमें बहुत छेद होते हैं ना, छेद ऐसे भोका 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 सब ना जालीदार, ये तो ये वो सुतरफेणी, इस प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। और इस प्रकार की मिठाइयाँ जो है ये इस समय का स्पेशलिटी है। हम ब्रज में जाएंगे तो आप सब जगह घेवर का एडवर्टाइज मिलेगा आपको, मैसूर पाक। और जो लड़की आती है घर पे नई नई ब्याही हुई, उसको घेवर और मैसूर पाक और सुतरफेणी खिलाई जाती है बड़े ट्रेन के साथ में, झूले पे झुलाते हैं और मैसूर पाक खिलाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।